और दूसरी बात ये भी है कि वो प्रवचन लंबा था, ये लंबा छोटा भी हो गया ताकि हमें श्रीवास पंडित के बारे में ज्यादा सुन वो प्रवचन जो है करीब 38 मिनट और 40 मिनट का था, है ना, तो जल्दी समाप्त भी हो गया ताकि हम श्रीवास पंडित के बारे में ज्यादा सुन सकें, है ना। हरि बोल। तो पंच तत्व में से ये पंचम तत्व है, पंच तत्व में से पंचम तत्व है श्रीवास पंडित। प्रथम तत्व श्री कृष्ण चैतन्य, द्वितीय तत्व प्रभु नित्यानंद, तृतीय तत्व श्री अद्वैत, चतुर्थ तत्व गदाधर और पंचम तत्व श्रीवास, है ना। तो पंचम तत्व श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। और पांच भाई हैं, पंचम तत्व भी हैं और ये पांच भाई भी हैं। सबसे बड़े श्री नलिन, उसके बाद श्रीवास, उसके बाद श्री राम, उसके बाद श्रीनिधि, उसके बाद श्रीपति, पांच श्री। और पिता का नाम श्री जलधर। श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना और प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान करते थे और अपने भाइयों श्री राम, श्रीनिधि और श्रीपति का मार्गदर्शन करते थे। तो चार भाई रहते थे क्योंकि श्री नलिन देह छोड़ चुके हैं, है ना। तो श्री नलिन की ही पुत्री थी नारायणी जो कि श्रीवास के घर में रहती थी। अद्वैत आचार्य के संग में इन्होंने भागवत अध्ययन किया और भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना की। इन्होंने प्रार्थना क्यों की, क्योंकि ये केवल श्री कृष्ण ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों और दंभी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकते थे, कृष्ण ही कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति का जो विस्तार है वो कृष्ण ही कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे थे ये लोग। श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी, वे एक धात्री के रूप में निमाई की सेवा करती थी। तो कितनी माताएं, 7 माताएं हैं ना, एक जननी माता है और एक धाय माता है। तो श्रीवास की पत्नी जो मालिनी है वो भी चैतन्य महाप्रभु की दूसरी माता है। 7 माताओं में से जननी माता सची देवी हैं और धाय माता धात्री माता मालिनी है ना। जब विश्वम्भर प्रकट हुए समस्त भक्त भक्तों के हृदय वात्सल्य भाव से पूरित हो गए। श्री गौर मालिनी और श्रीवास से दूसरे माता पिता के समान प्रेम करते थे। श्रीवास अंगन निमाई की बाड़ी से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था। निमाई बाड़ी बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है योगपीठ, उसे कहते हैं निमाई बाड़ी। तो निमाई बाड़ी से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था, अभी भी है। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल कमरे थे और ऊंची सुरक्षात्मक सीमा और हरे भरे सघन कुंज और निकुंज थे। श्रीवास आंगन अभी भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसकी जो बाउंड्री है वो बहुत बड़ी है, है ना। तो उसमें जो है सुरक्षा की जो दीवार थी वो भी उसमें बहुत ऊंची थी, अभी तो उतनी ऊंची शायद नहीं है। प्रत्येक रात्रि गौरांग महाप्रभु और उनके प्रिय मित्र वहाँ हर्ष उन्मादक कीर्तनों का आनंद उठाते थे और वृंदावन की रस का आस्वादन करते थे। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधावेश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में इनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था। इस घटना के बाद श्रीवास अंगन खोल भंग डंगा के नाम से विख्यात हो गया। खोल भंग डंग, खोल का मतलब मृदंग और भंग का मतलब जो तोड़ा गया, है ना। खोल भंग डंग स्थान, तो वह स्थान जहां मृदंग तोड़ा गया, खोल भंग डंग के नाम से विख्यात हो गया। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी कानून जारी कर दिया। कहा गया कि उल्लंघनकारियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा। ये बहुत भयानक ये कानून उसने बना दिया था काजी ने। वहाँ का जो है वो उस स्थान का अधिकारी था, तो उसने क्या कानून बना दिया था कि अगर जोर जोर से कीर्तन करोगे तो तुम लोगों को मुसलमान बना देंगे। और मुसलमान बनाना बड़ा आसान था, वो अपनी सुराही का पानी का छिड़क दे आपके ऊपर तो आपको फिर हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो आपको मुसलमान समाज में जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं, है ना। तो सुराही अपनी सुराही का पानी छिड़क दें तो हिंदू समाज से आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है कुछ रीतियाँ चलती थी, कुरीतियाँ चल रही थी, तो उस समय जो है बहुत खतरनाक ये कानून था। तो स्त्रीवास पंडित इस घटना से बहुत डर गए। उनके ही घर में कीर्तन होता था तो श्रीवास ठाकुर बहुत डर गए थे इस घटना से। श्रीवास अंगन के भीतर भगवान गौर सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। तो इस घटना से फिर चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया कि अब मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा। इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपना ईश्वर भाव नहीं दिखलाया था, अपने ईश्वर भाव में नहीं आए थे, लेकिन अब ईश्वर भाव में वो आकर के और सब भक्तों का भय दूर करने के लिए आश्वासन देते हैं कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, काजी हो या कोई भी हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं काल का भी काल हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो है स्वरूप दिखलाया था और श्रीवास पंडित का डर दूर किया था। श्रीवास पंडित का घर गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था, हेड ऑफिस। ये संकीर्तन आंदोलन जो पूरे संसार में फैल रहा है इसका हेड ऑफिस कौन है? श्रीवास अंगन हेड ऑफिस है। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रात्रि कीर्तन और भगवान गौरचंद्र के अनेक ब्रज लीलाएं घटित हुईं। तो बताया जाता है कि श्रीवास के घर में चैतन्य महापुरुष सब लीलाएं हुई। तो जगन्नाथ सच्ची के घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन लीलाएं सब हुई कहाँ? श्रीवास के घर में। जैसे कि कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में वसुदेव देव के, जब कारागार में थे, है ना। और सब लीलाएं कहाँ हुई? नंद के आंगन में, नंद महाराज के आंगन में सब कृष्ण ने लीलाएं करी, है ना। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो हुआ सच्ची जगन्नाथ के घर में, लेकिन जितनी लीलाएं करी हैं सब श्रीवास अंगन में करी हैं। ब्राह्मणों के ब्राह्मण समाज के मुख्य विद्वानों श्रीवास पंडित और श्री अद्वैताचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरि नाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना तन मन घर और परिवार संपूर्ण संपत्ति गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। संकीर्तन आंदोलन में सब कुछ अर्पित किया। तो ऐसे गृहस्थ भी क्या होते हैं? सन्यासी होते हैं। ऐसे गृहस्थों को भी सन्यासी कहा जाता है। तो श्रीवास पंडित एक ऐसे गृहस्थ हैं जिन्होंने अपना शरीर, अपना मन और अपना घर और अपनी संपत्ति, अपना परिवार सब कुछ समर्पित कर दिया संकीर्तन आंदोलन में। श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य इन दोनों ने, ये किसी अन्य देवी देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि ये उनके संबंधी थे, वरन इसलिए कि चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। अपने परिवार का पालन पोषण करते थे श्रीवास पंडित, इसलिए नहीं कि ये मेरा परिवार है। किसलिए परिवार का पालन पोषण करते थे? पत्नी बच्चे और पूरा परिवार। किसलिए? कि श्री चैतन्य के सब सेवक हैं, ये सब कृष्ण के दास हैं। पत्नी कौन है? कृष्ण की दासी है, इसलिए पत्नी का पालन करते थे। और बच्चे भी और भाई और जितना परिवार सेवक, ये सब कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए पालन करते थे। तो ऐसी गृहस्थ की चेतना, श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, ये बद्ध जीवों के हितैषी हैं। गौरांग महाप्रभु के संग संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास पंडित लोक लोकांतर के प्रचारक हैं, भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। इनके विषय में गौर गुणोद्देश दीपिका में लिखा हुआ है, श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि पर्वताख्यो मुनिवरो या आसीत नारद प्रिया सराम पंडिता श्रीमान तत् कनिष्ठ सहोदर। ये गौर गुणोद्देश दीपिका का श्लोक संख्या 90, इसमें जो है ये बताया गया है कि श्रीवास पंडितो धीमान, धीमान का मतलब बहुत बुद्धिमान। श्रीवास पंडित यह पूरा नारद मुनि, जो प्राचीन काल में नारद मुनि थे, पर्वताख्यो मुनि मरो और पर्वत मुनि एक दूसरे मुनि हैं जो कि नारद के बहुत प्रिय हैं। नारद मुनि और पर्वत मुनि कई बार एक साथ इनका नाम आता है। कुछ घटनाएं भी ऐसी हैं शास्त्रों में, नारद और पर्वत मुनि एक साथ कोई कहीं जाते हैं, किसी स्थान में जाते हैं या कोई कार्य करते हैं तो नारद मुनि और पर्वत मुनि ये दोनों तो नारद जी के बहुत प्रिय हैं पर्वत मुनि। वही पर्वत मुनि श्री राम पंडिता श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर, तो उनके छोटे भाई बने। पर्वत मुनि ही जो है श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री राम पंडित हैं। श्रीहट्ट निवासी वैदिक पंडित श्री जलधर के पुत्र हैं। श्रीहट्ट से जो है नवद्वीप में आकर के निवास करने लगे थे और श्रीवास जी का जन्म श्रीहट्ट में हुआ था। श्री नलिन और श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि हैं, इनकी ये पांच भाई हैं। एक दिन श्री निमाई प्रभु मुख्य सड़क पर जा रहे थे। ये समय की घटना है जब निमाई पंडित भक्त नहीं बने थे। क्या करते थे? शिक्षा देते थे, शिक्षक थे, टीचर, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के शिक्षक थे। तो उस समय भक्ति की कोई चर्चा नहीं करते थे, है ना, तो भक्तों को वह बड़ा दुख होता था, इनको देख करके बड़ा दुख होता था। और ये भक्तों को जो है रास्ते में रोक लेते थे और किसी शब्द की व्याख्या पूछते थे, इस शब्द की व्याख्या बताओ, उस शब्द की व्याख्या बताओ, और जो भी व्याख्या बताएं उसका खंडन करते थे। तो भक्त लोग जो है बड़े निराश होते थे इनके व्यवहार से। लेकिन एक बार ये निमाई पंडित मुख्य सड़क पर जा रहे हैं, 5-7 इनके विद्यार्थी भी हैं, विद्यार्थियों को अपना मित्र की तरह व्यवहार करते थे निमाई पंडित। 5-7 विद्यार्थी साथ में थे, पूरी मस्ती और चंचलता में चल रहे थे। प्रभु ने देखा सामने श्रीवास पंडित आ रहे हैं, तो श्रीवास जी ने देखा तो हंसे, निमाई ने इन्हें नमस्कार किया। इतना शिष्टाचार था कि बाकी भक्तों को तो बहुत तंग करते थे, चलाते थे, लेकिन श्रीवास पंडित क्योंकि पिता के समान है तो बहुत शिष्टाचार था। तो श्रीवास पंडित को इन्होंने नमस्कार किया, निमाई पंडित ने नमस्कार किया और श्रीवास जी ने आशीर्वाद दिया। श्रीवास जी ने हंसकर कहा, कहो उद्धत शिरोमणि, उद्धत शिरोमणि, उद्धत का मतलब है चंचल, उद्दंड, जो अपनी मस्ती में हमेशा रहे, किसी की बात सुनता नहीं है, उद्धत शिरोमणि, उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो? डांटा भी लेकिन कोमल शब्दों में डांटा। श्रीवास पंडित ने डांटा, उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो? कहो, हंसकर कहा, कहो उद्धत शिरोमणि, मनुष्य एकमात्र कृष्ण भक्ति जानने के लिए पढ़ता है, यदि कृष्ण भक्ति प्राप्त ना हुई तो विद्या का क्या फल है? डांटने लगे श्रीवास जो है, भगवान को डांट रहे हैं और भगवान डांट खा रहे हैं। विद्या का क्या फल? अगर कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो विद्या का क्या फल है? इसलिए इस मूल्यवान समय को बेकार मत गंवाओ। भगवान को एक भक्त डांट रहा है, भक्त को इतना अधिकार होता है कि भगवान को डांटता है, और भगवान डांट खाते हैं, भगवान से कहते हैं। इसलिए इस मूल्यवान समय को बेकार मत गंवाओ, इसलिए तुम बहुत पढ़ लिए हो, अब चंचलता छोड़कर कृष्ण भजन में शीघ्र लग जाओ। तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती थी निमाई पंडित से बात करने की, बड़े बड़े विद्वान भट्टाचार्य, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। श्रीवास पर डांट रहे हैं और भगवान डांट खा रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं, भगवान डांट खा करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। महाप्रभु हंसकर बोले, हे पंडित जी, आपकी जब कृपा होगी तो कृष्ण भजन निश्चित होगा। ये कहा आपकी अगर कृपा होगी तो निश्चित कृष्ण भजन होगा, ये कहा। श्रीवास पंडित के आंगन में एक कनेर का पेड़ था जिसमें 12 महीने सुंदर फूल खिलते थे, 12 महीने, और जितने भी फूल तोड़ो उसमें फूल निकलते जाते थे, कभी समाप्त नहीं होते थे। ये विशेषता थी, है ना। तो जितने भी वैष्णव हैं अपने घर में पूजा के लिए फूल तोड़ने आते थे, इनके ही घर से आते थे, है ना। जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, उसी प्रकार से जो है ये फूलों का जो है ऐसा वृक्ष था कि कभी कभी समाप्त नहीं होते। तो कुछ वैष्णव जो है पूजा के लिए प्रातःकाल श्रीवास जी के घर फूल लेने आए। श्रीवास जी ने पूछा कि क्यों प्रसन्न हो रहे हो आज, आज तुम लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हो, क्या कारण है, है ना। तो वैष्णव ने कहा कि गौरहरि परम कृष्ण भक्त बन गए हैं, जब से गया की यात्रा से आए हैं तो अब वो कृष्ण के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत ये जो है शुभ समाचार जो है सब वैष्णव जो है एक दूसरे को बता रहे हैं, फूल तोड़ते जा रहे हैं और ये चर्चा करते जा रहे हैं कि आज हम लोगों का जो है भाग्य सौभाग्य उदय हुआ है, है? कि निमाई पंडित अब क्या बन गए हैं, वैष्णव बन गए हैं, अब तो कृष्ण के अलावा कुछ बात करते ही नहीं है। तो श्रीवास पंडित अति हर्षित हुए और बोले, गोत्रम नो वर्धताम, मतलब हमारा गोत्र बढ़े, गोत्र मतलब परिवार, हमारा परिवार बढ़े, है ना। क्योंकि वैष्णवों का परिवार बहुत थोड़ा था, बहुत थोड़े संख्या में वैष्णव थे, और जो नास्तिक थे पाखंडी वो ज़्यादा संख्या में थे, और वो वैष्णवों की खिल्ली उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, वैष्णवों का जो है बहुत अपमान होता था। तो श्रीवास पंडित, है ना, ये सब जो है प्रार्थना करते थे भगवान से कि कृष्ण आकर के हमारे वैष्णव धर्म को बढ़ाएं फैलाएं। तो ये तो नहीं समझे कि निमाई जो है साक्षात कृष्ण है, लेकिन निमाई पंडित अगर आ जाए हमारे समाज में, वैष्णव समाज में अगर आ जाए तो हमें बहुत बल मिलेगा, इतना जो है सबको विश्वास था। निमाई पंडित अगर आ गए हमारे समाज में, वैष्णव समाज में, तो फिर पाखंडियों के सिर तोड़ने का जो है हमारे पास बल आ जाएगा, हम उनके सिर फोड़ेंगे। तो उनको जो है इस बात का बड़ा विश्वास था, है ना। तो श्रीवास पंडित बहुत प्रसन्न हुए, गोत्रम नो वर्धताम, मतलब हमारा गोत्र बढ़े। अब निमाई पंडित अगर आ गए हैं तो हमारा गोत्र अवश्य ही बढ़ेगा, फैलेगा, है ना। उन्होंने कहा और सबने कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। अब इस समय क्या हुआ कि जब गौरांग जो है कृष्ण की चर्चा करते हैं और कोई बात ही नहीं करते हैं, और रोते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, पछाड़ खा के गिर जाते हैं, तो सची माता बहुत चिंतित होती है कि मेरे पुत्र को कोई बीमारी लग गई, है ना। और कई तरह के लोग कई तरह की बातें बोलते हैं कि ये वायु का विकार है, गैस, पेट की गैस दिमाग में भर गई है, इनको बांध के रखो और ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, ये करो वो करो। और सची माता जो सुनती वही मानती कि हाँ ऐसे ही हो, ऐसे ही है, वैसे ही है, है ना। तो श्रीवास पंडित जब आए घर में तो पहली बार सची माता को सही सूचना मिली कि कोई बीमारी नहीं है, निमाई को कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्ति योग है। तो श्रीवास पंडित जब आए, सची माता के घर पर आए, तो गौरांग देव ने इनको प्रणाम किया और इनके दर्शन करते ही गौरांग देव प्रेमाविष्ट हो गए, मूर्छित हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए। एक महान वैष्णव का दर्शन करके भगवान मूर्छित होकर गिर गए, है ना। तब श्रीवास जान गए कि ये तो कृष्ण प्रेम का विकार है, ये कृष्ण प्रेम की अवस्था है, ये कोई सामान्य अवस्था नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये तो बहुत सौभाग्य का लक्षण है, हा? कि निमाई में ये कृष्ण प्रेम का उदय हुआ है। अहो श्रीवास जान गए वे मूर्ख हैं जो इनमें वायु का विकार कहते हैं। अहो इनमें तो महाभक्ति का योग और श्री कृष्ण की कृपा दिखाई पड़ रही है। पहली बार किसी व्यक्ति ने निमाई पंडित के अंदर देखा कि ये भक्ति योग है, ये तो कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। पहली बार जितने लोग उतनी बातें हैं, सब उल्टा उल्टा बोल रहे हैं और सची माता भी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो सची माता को बताते हैं कि माता तुम जो है चिंता मत करो, और समय श्री चैतन्य ने निमाई ने जो है श्रीवास पंडित से ये कहा कि पंडित अगर आप ही मुझे बताते कि मुझे वायु का विकार हो गया है तो मैं गंगा जी में जाकर के अपने प्राण त्याग दिया होता, आपने मेरे जीवन की रक्षा कर ली, है ना। सोचिए तो श्रीवास पंडित ने जो है मतलब निमाई को भी जो है कितना मतलब बल दिया इस लीला में, और सच्ची माता को भी जो है आश्वासन दिया कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी मत बताओ कि इनको क्या हुआ है ना। तो श्रीवास पंडित ने कहा, निमाई मेरे पास तुम्हारा इलाज है, वो ये कि सब मिलकर एक स्थान पर श्री कृष्ण कीर्तन करेंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। श्रीवास पंडित ने कहा हरि बोल। इन्होंने माता सची देवी की चिंता दूर कर दी ये कहकर कि माता गौर हरि में कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है, ये वायु रोग नहीं है। श्रीवास के वचन सुनकर श्री गौर हरि ने अपने घर में संकीर्तन का आरंभ कर दिया। एक दिन प्रभु श्रीवास के घर पर आए और आवेश में बोले, अरे श्रीवासिया क्या कर रहा है तू? ये पहली बार चूंकि ईश्वर भाव में आए, ये उसी समय की घटना है जब चांद काजी ने वो कानून बना दिया था, है ना, किसी के संग। तो श्रीवास पंडित जो है नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, जहाँ भय का अवसर होता है तो भक्त लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं रक्षा करने के लिए, तो अपने घर में नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय चैतन्य देव जो है ईश्वर के आवेश में आए, और ईश्वर के आवेश में आए कभी भी ऐसे श्रीवासिया नहीं बोलते थे, है ना, पंडित ही बोलते थे, पंडित है ना, पिता के समान है, पंडित बोलते थे। लेकिन अभी क्या कहते हैं, अरे श्रीवासिया क्या कर रहा है तू? उस समय श्रीवास नरसिंह भगवान के ध्यान में मग्न थे, प्रभु की आवाज सुनकर इनकी समाधि भंग हुई, चारों तरफ देखने लगे। प्रभु ने कहा, देख किसकी पूजा और ध्यान कर रहा है तू? भगवान ईश्वर के आवेश में कहते हैं, तू किसकी पूजा और किसका ध्यान कर रहा है? जिसका ध्यान कर रहा है देख उसे अपने सामने। भगवान जो है बोले, श्रीवास पंडित ने देखा नरसिंह देव वीरासन पर बैठे हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में सुशोभित हैं और सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं। ये देखकर के श्रीवास स्तब्ध हो गए। श्री गौरांग ने कहा, अरे श्रीवास इतने दिन तक तूने मुझे नहीं पहचाना, कौन हूं मैं? इतने भगवान कहें, तुम्हारे उच्च संकीर्तन और अद्वैत की हुंकार सुनकर मैं बैकुंठ छोड़कर यहाँ आया। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और अद्वैत की हुंकार सुन करके मैं वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आया हूँ। तुम मुसलमानों से और पाखंडियों से भयभीत हो रहे हो। एक तो मुसलमानों का शासन है, एक तो उनका डर है, दूसरा पाखंडियों का डर। पाखंडी लोग जो है उल्टी 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 बातें सुनाते हैं कि जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो, है ना, धीरे धीरे कीर्तन करो, मन मन में कीर्तन करो, जप करो मन मन में, जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो, है ना। तो इस तरह की बहुत निंदा कर रहे थे। तो एक तो पाखंडियों के कड़वे वचन और दूसरे मुसलमानों का शासन, है ना, उनका भी जो है कानून निकला है कि जोर से कीर्तन नहीं करना, मुसलमान बना देंगे। तो भगवान बोले कि तू मुसलमान और पाखंडियों से भयभीत हो रहा है, निश्चिंत हो जाओ आज से। श्रीवास पुलकित होते प्रेम के अश्रु की धारा बहने के लिए अनेक स्तुतियां करते हुए श्रीवास आनंद में विभोर हो गए। श्री गौर हरि ने कहा, श्रीवास सब परिवार को बुलाओ। उस समय जो कमरा था श्रीवास पंडित का, तो उसमें श्रीवास पंडित ही अकेले नरसिंह भगवान का ध्यान कर रहे थे रक्षा के लिए, मुसलमानों के इस कानून से रक्षा के लिए। तो उस समय भगवान जो है अंदर चले गए इस कमरे में, और श्रीवास पंडित से क्या कहते हैं कि जो तुम मेरा दर्शन कर रहे हो चार भुजाओं में और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तो मेरे इस रूप का दर्शन अपने पूरे परिवार को कराओ। देखो भगवान चैतन्य ने जो है ऐसा अद्भुत रूप दिखलाया अपना, ऐसा दिव्य रूप दिखलाया अपना, और श्रीवास के घर की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितने लोग हैं सबको दर्शन दिया, और बाउंड्री के बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं, सब वही समझते हैं निमाई पंडित, कोई खास नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, लोग जो है निमाई पंडित समझते हैं, कुछ कुछ विशेष नहीं है। और यहाँ श्रीवास पंडित के घर की चार दीवारी के अंदर बहुत लोग थे, उनका बहुत बड़ा परिवार था, सब भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और फिर दास दासियां, उनके भी परिवार, उनके भी बच्चे, बहुत बड़ा परिवार था, एक ही घर में रहते थे। उन सबको जो है अपना दर्शन दिया भगवान ने चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के कारण। तो भगवान कहते हैं श्रीवास सब परिवार को बुलाओ और मेरे इस रूप के दर्शन करो, मेरी पूजा करो और वर मांगो, क्या चाहते हो। इस तरह से भगवान जो है बोले। श्रीवास ने स्त्री पुत्र आदि सहित प्रभु की पूजा की और उनके चरणों में प्रणाम किया, और प्रभु ने इन्हें अभयदान दिया, अभयदान दिया कि कोई चिंता ना करना, खूब कीर्तन करो, खूब जोर जोर से कीर्तन करो, कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसकी हिम्मत है, अनिष्ट करने की किसकी हिम्मत है, विरोध करने की किसकी हिम्मत है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मैं हूँ। तो भगवान जो है श्रीवास पंडित को आश्वासन देते हैं। श्रीवास पंडित की एक भतीजी थी केवल 4 वर्ष की आयु, प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर के रो। इतना कहती वो बालिका कृष्ण कृष्ण कहकर प्रेमामिष्ट हो गई और नाचने लगी, और नेत्रों के जल से उसने पूरा आंगन भिगो दिया। हरि बोल। 4 वर्ष की लड़की, उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। भगवान ने जो है, भगवान ने श्रीवास पंडित को ये कहा था कि अगर जो है राजा की जो नौका आएगी, नौका में जो है सैनिक आएंगे हम सब वैष्णवों को बंदी करके राजा के पास ले जाने के लिए अगर आएंगे तो सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, और मैं अकेला जाऊंगा, राजा के सभा में जाऊंगा, राजा मतलब मुसलमान हुसैन शाह, तो उसी की सभा में मैं जाऊंगा, और मैं वहां पर सबको कृष्ण कृष्ण कह करके प्रेम से रुलाऊंगा, और वहाँ उसके महल के जितने हाथी घोड़े हैं उनको भी कृष्ण प्रेम कह करके उनसे भी कृष्ण प्रेम बुलवाऊंगा, और वो भी रोएंगे, हाथी घोड़ों को भी रुलाऊंगा। तो भगवान जी ने जब कहा तो श्रीवास पंडित को कुछ संदेह रहा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस संदेह को दूर करने के लिए 4 वर्ष की बालिका को चैतन्य महाप्रभु ने निमित्त बनाया, ये विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई पशु पक्षी था नहीं। तो 4 वर्षीय बालिका को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि कृष्ण प्रेम कह करके रो करके दिखा, और नारायणी 4 वर्ष की बालिका, अबोध बालिका है ना, और वो कृष्ण प्रेम कह करके कृष्ण नाम बोल करके इतना रोई कि आंगन गीला हो गया, श्रीवास पंडित का आंगन गीला हो गया है ना। तो ये सब जो है लीलाएँ हैं, तो श्रीवास पंडित के संबंध में बहुत सी लीलाएँ हैं, इनका तो जो है अंत नहीं, कई घंटों तक भी चलती रहेंगी लीलाएँ। तो अब हमारा जो है समय हो गया है, तो हम लोग अब जो है यहाँ विश्राम करेंगे। श्री श्रीवास पंडित तिरुभावतिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंहदेव की जय हो। Thank you.